समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात, कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आकाशवाणी स्टूडियो में आज की हसीन सुबह से आगाज करते हैं कार्यक्रम का, और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार फरहत, एंड टू यू एंड आवर लिसनर्स, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वी वेलकम यू अलोंग, दिस इज आज सवेरे, वेयर वी शेयर द लेटेस्ट नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एंड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन which is related to today. Today it's 2nd of May 2026, and there is a quote that I remember reading today. As Charles Dickens once said, "The sun himself is weak when he first rises and gathers strength and courage as the day gets on." So reflecting on this quote, listeners, get up and move, of course, while listening to us only. So the sun's been up for a while, it's had a head start, and now it's your turn to make it count, make each day count.
बिल्कुल शगुन, फिलहाल तो लेकिन देखा जाए तो जो सूरज है अपने शबाब पर है, क्योंकि गर्मी जो है वो फिर से हो गई है, बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ा है एक बार
no
फिर
respite it brought
बिल्कुल
with it.
तो इसलिए अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। और हाँ, जैसा कि आपने कहा कि आगे बढ़िए और बहुत सारी पॉजिटिव चीजें जो है
वो काउंट योर ब्लेसिंग्स।
बिल्कुल,
सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस।
जी, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं निर्वाचन आयोग से जुड़ी खबर से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। इनमें मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्र शामिल हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, और आयोग ने बताया है कि संबंधित मतदान अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को इन मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ था। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग को अमान्य घोषित किया है। आयोग ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी पत्र लिखा है।
Reserve Bank of India has said that 98.47% of 2,000 rupees denomination banknotes in circulation have been returned nearly 3 years after it announced their withdrawal. The central bank had declared the withdrawal of 2,000 rupees notes on 19th May 2023 as part of its currency management exercise. So at that time, notes worth 3.56 lakh crore rupees were in circulation. So this has now declined to 5,451 crore rupees as of 30th of last month. The facility to exchange 2,000 rupees notes has been available at 19 RBI issue offices since the withdrawal announcement.
और अब जनगणना की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना शुरू हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी, जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
The government has said that it is ensuring preparedness and taking all necessary steps to facilitate energy supply, maritime operations and support to Indian nationals amid the evolving West Asia situation. In a statement, Ministry of Petroleum and Natural Gas said that enforcement actions to curb hoarding and black marketing of LPG is continuing across the country. More than 2,300 raids were conducted across the country. It said that online LPG cylinder bookings increased to 98% on industry basis. Around 49.8 lakh domestic LPG cylinders were delivered against bookings of around 41.6 lakh LPG cylinders.
और शगुन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। और दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही और श्री पुरी ने बताया कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है।
Stretching our boundaries a little, U.S. President Donald Trump has rejected Iran's latest proposal to end the ongoing conflict, casting doubt on prospects for a negotiated settlement and warning of the risk of further escalation. Iran submitted its revised offer through mediators, with state media confirming the handover. Trump acknowledged that Tehran had made strides in negotiations but said he remains dissatisfied with the terms on the table, stating that Iran is seeking concessions he cannot accept. He also described Iran's leadership as very disjointed, signaling continued mistrust between the two sides. Iranian state-linked media, including Fars News Agency, reported that the country's leadership remains fully engaged in overseeing the countering speculation of internal instability. The diplomatic impasse comes amid intensifying violence elsewhere in West Asia.
और बात की जाए आईपीएल क्रिकेट की, तो आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
नाउ बैडमिंटन थॉमस कप, इंडियन मेन्स बैडमिंटन टीम विल फेस फ्रांस इन द सेमीफाइनल्स ऑफ दिस थॉमस कप 2026 एट होर्सन्स इन डेनमार्क टुडे। India advanced to the semi-finals of the tournament after dominant 3-0 win over Chinese Taipei in the quarter-finals. Lakshya Sen gave India the perfect start, saving 2 match points to beat world number 6 Xu Tianxian 18-21, 22-20, 21-17 in a thrilling opener. So the doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty then extended the lead with a hard-fought 23-21, 19-21. 21-12 win over Xiu Xiang Shei and Wang Chi Lin. India sealed the tie when Ayush Shetty held his nerve to beat Lin Chun-Yi, confirming a comprehensive team victory. The Indian women's team, led by PV Sindhu, failed to make it past the group stage as they were eliminated by China in the Uber Cup 2026.
और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। रुक करते हैं चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के समाचारों का। तो शगुन, सबसे पहले चेन्नई में क्या है खास?
यस फरहत, बिगिनिंग विद चेन्नई, वेयर सदर्न रेलवेज चेन्नई डिवीजन हैज सरपास्ड इट्स पार्सल रेवेन्यू टारगेट ऑफ 74.22 करोड़ फॉर 2025-26, अर्निंग अ रिकॉर्ड 74.56 करोड़ एंड देन रीइन्फोर्सिंग इट्स पोजिशन as one of the Indian Railways' leading freight and logistics hubs. The division transported 1,288 tons of tyres from Korukupet and Tambaram to destinations across the country. It also partnered with the Central Warehousing Corporation to run a parcel cargo express train carrying branded tyres to Auckland. This it did by Central Warehousing Corporation. Southern Railway has also commissioned new parcel offices at Chengalpet and Jolarpet, while additional parcel terminals have been proposed to Royapuram, Tada and Mundiyapakkam.
और अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में आज 3 महत्वपूर्ण खबर है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल स्वगणना के माध्यम से जनगणना में अपना विवरण दर्ज किया। राजधानी दिल्ली के सभी वार्डों में जनगणना 2027 अभियान आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने बताया कि ये डिजिटल पहल नागरिकों को अपने घर की जानकारी सीधे जमा करने की सुविधा देती है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये प्रक्रिया आसान और सुरक्षित है, जिससे प्रत्येक नागरिक सहजता से इस अभियान से जुड़ सकता है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उज्ज्वला योजना आज करोड़ों महिलाओं के जीवन में बड़े परिवर्तन का आधार बन चुकी है। 2016 में शुरू हुई इस योजना ने कल 1 दशक पूरे कर लिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना ने महिलाओं को धुएं और बीमारियों से बचाकर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और सम्मान का उपहार दिया। उन्होंने कहा कि रसोई के पुराने संघर्षों को पीछे छोड़कर स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ती नारी शक्ति की ये तस्वीर देश में हो रहे सच्चे महिला सशक्तिकरण का प्रमाण है। और राजधानी दिल्ली में कल कैच द रेन अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ये अभियान जल संरक्षण को सशक्त बनाने और वर्षा जल संचयन को जन भागीदारी का संकल्प बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि श्रीमती सरकार द्वारा 50,000 तक की सब्सिडी, पानी के बिल में 10-15% तक की छूट और निःशुल्क तकनीकी सहायता जैसे कदम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
फरद, वी विल फोकस नाउ ऑन बेंगलुरु। Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar has said that efforts are underway to restructure KR market with proper utilization of this historic building. He was speaking after inaugurating the revamped management of the ground floor parking complex at KR market in Bengaluru yesterday. The senior minister said that private parking will be allowed alongside government parking facilities. He added that following repairs at KR market and the relocation of vendors, the market has been made more usable. Stating that development does not happen overnight, he added that all legislators in Bengaluru will be taken into confidence for the city's development. He also spoke of a plan to construct about 138 kilometers of elevated structures and underpasses to ensure smoother vehicular movement. The elevated structures, he then added, that they will help prevent the encroachment of roadside properties. This was the update I had from Bengaluru.
और शगुन, मुंबई का रुख कर लेते हैं। अब नीट यूजी 2026 परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की सुविधा के लिए सेंट्रल रेलवे ने कल दिन के समय मेगा ब्लॉक न चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि आवश्यक इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए रेलवे 2 और 3 मई को मध्य रात्रि मेगा ब्लॉक चलाएगा और ये ब्लॉक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और विद्या विहार स्टेशनों के बीच मेन लाइन पर, साथ ही ठाणे और वाशी नेरूल के बीच ट्रांस हार्बर लाइन पर लागू रहेगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो संशोधित ट्रेन समय सारणी देखें और आवश्यक यात्रा व्यवस्था पहल से करें। वहीं महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड इस वर्ष फरवरी मार्च में आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम आज घोषित करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार परिणाम ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। छात्र परिणाम जारी होने के बाद बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं। वहीं ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों के लिए एक समर्पित बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित महालक्ष्मी सरस बिक्री और प्रदर्शनी 2026 का उद्घाटन आज मुंबई के बांद्रा कोला परिसर स्थित MMRDA ग्राउंड में किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के अधीन महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में करेंगे। ये प्रदर्शनी आज से 14 मई तक आम जनता के लिए खुली रहेगी।
Now turning our attention to Hyderabad, the Telangana government has introduced a new centralized procurement policy to improve accountability in educational material distribution. Chief Minister A. Revanth Reddy has set June 15th as the deadline to supply all necessary educational items to students across the state. In a review meeting, the Chief Minister emphasized that students perform better when they receive uniforms, notebooks and other educational materials on time. He pointed out that the old system had many problems. The new centralized system aims to stop these issues, and officials have been strictly warned that quality materials must be supplied without any compromise. To ensure proper distribution, the government will appoint nodal officers at the mandal level. Officials must verify that every student receives complete materials and gather feedback about quality. The government has also decided to form a coordination committee involving SC, ST, OBC minority and education departments to work together for this initiative.
और अब पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर एक अपील पर तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की विशेष पीठ का गठन किया है। याचिका में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के संबंध में 4 मई को मतगणना केंद्रों पर केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। श्रोताओ, वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का, तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। जी बिल्कुल, आज आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। न्यूनतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मुंबई में आज दोपहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं कोलकाता में बारिश के साथ आंधी आने की आशंका है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
If I talk about Chennai, it is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 29 degrees Celsius and maximum will be around 38 degrees in Chennai. Bengaluru is expected to have rain or thunder showers, and they would occur towards afternoon or evening. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and the maximum temperature will be around 35 degrees Celsius in Bengaluru. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky and there is a possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will be, minimum temperature will be around 25 degrees and maximum temperature will be around 41 degrees Celsius in Hyderabad, Farat.
और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो शगुन इतिहास में सबसे पहले क्या है खास?
Well, yes, today, Farhat, let's tell our listeners that it's World Tuna Day. And this day, it's observed annually to highlight the importance of tuna and also promote sustainable fishing practices across the globe. Well, sharing the theme for this year, it's advocating for tuna conservation. And this theme, it focuses on the urgent need to manage tuna stocks sustainably as they are vital for, number one, global food security, number two, economies, number three, marine ecosystems. The day draws attention to threats like overfishing, also climate change, encouraging governments and industries to adopt responsible fishing practices.
बिल्कुल शगुन, और ट्यूना मछली के बारे में कहा जाता है कि ये समुद्र की सबसे मतलब महत्वपूर्ण और महंगी मछलियों में से एक है और काफी बड़ी होती है, मोटी होती है. हम बता दें अपने श्रोताओं को जिनको नहीं मालूम है. जी बिल्कुल, और अगर आप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, प्रशांत और अटलांटिक महासागर की तरफ रुख करेंगे तो इस तरह की मछलियां जो है वो वहां पर मिल जाती हैं.
राइट, एंड ट्यूना इज वन ऑफ द, एज यू आर आल्सो टेलिंग लिसनर्स, इट्स मोस्ट कमर्शियली वैल्यूएबल फिश स्पीशीज विद मिलियंस ऑफ टन्स इट्स हार्वेस्टेड एनुअली. And this actually makes its conservation critical for long-term sustainability. So tuna plays a crucial role in people's lives and it supports livelihoods, employment and nutrition for many coastal communities worldwide. So that's why protecting tuna stocks not only ensures economic stability for millions, but also helps maintain healthy oceans and thereby balanced marine ecosystems. So we were telling you about World Tuna Day.
बिल्कुल, और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं और सबसे पहले शगुन 1926 में क्या है खास?
एग्जैक्टली, द एडवेंचर्स ऑफ प्रिंस आखमेद. इट वॉज डायरेक्टेड बाय जर्मन एनिमेटर लोते राइनिगर यूजिंग इंट्रिकेट कटआउट सिलोएट्स. Had its first public screening in Berlin and it stands today as the oldest surviving animated feature film. Now, Farhat, in 1952. First commercial jet airliner service, British Overseas Airways Corporation, BOAC, introduced passenger flights with the de Havilland Comet, ushering in jet age travel. In 1986, American explorer Anne Bancroft reached the North Pole by dog's sled, officially becoming the first woman in history to travel across the ice to the pole by dog sled.
और 1997 की बात कर लेते हैं. अब ब्रिटेन में 18 वर्षों के बाद लेबर पार्टी सत्ता में आई और उसके नेता टोनी ब्लेयर 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने. वहीं 1999 में मिरिया मुस्कोसो ओपनामा की प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई. और सन 2004 में मारेक बेलका पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने. वहीं सन 2010 में सेबी का प्राथमिक पूंजी बाजार में नए इश्यू की खरीद के लिए आवेदन करते समय संस्थागत निवेशकों को भी खुदरा निवेशकों की तरह शत प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश प्रभावी हो गया.
In 2011, US operation against Osama bin Laden was conducted in Abbottabad and the operation was a major global counter terror milestone.
और अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर जहां याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सत्यजीत राय के बारे में. ये 20वीं शताब्दी के विश्व की महानतम फिल्मी हस्तियों में से एक थे जिन्होंने यथार्थवादी धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा साहित्य हो या फिर चित्रकला जैसी अन्य विधाओं को अपनी प्रतिभा का परिचय दिया.
Well, yes, Satyajit Ray, a pioneer of Bengali cinema. Well, we know him for his very real portrayal of Indian society. His journey, though, began in 1950s with his debut film, Pathar Panchali, which went on to win multiple international awards as well. So, Farhat, he then continued to make masterpieces, naming a few, Charulata, the Apu trilogy, throughout his career. And his impact on cinema is undeniable, right?
बिल्कुल शगुन, विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत राय भारत रत्न के अतिरिक्त पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं। इसके अलावा विश्व सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए सत्यजीत राय को मानद ऑस्कर अवार्ड से भी अलंकृत किया जा चुका है। तो एक दूरदर्शन ने इनका साक्षात्कार जो है वो लिया था, तो आइए सुन लेते हैं।
Yes, there are a few things which haven't been done yet. For instance, I've always wanted to do an epic. I had been fascinated by the Mahabharata and I'm still fascinated by Mahabharata, but I don't think the whole of Mahabharata can be tackled. So perhaps a segment of an epic, a segment of Mahabharata I'd do using our tradition of stylization, perhaps using the Kathakali. I really haven't got a very clear notion of what I want to do, but I definitely do want to do an epic, a story which everybody knows from beforehand. That is something which I want to do.
Wow, how great. So he has influenced generations of filmmakers and also continues to inspire them even today, Farhad, right? Today we are also remembering Leonardo da Vinci, the true genius who graced this world with his presence, and he is among the most influential artists in history, having left a significant legacy, well, not only in the realm of art but in science as well, so each discipline informing his mastery of the other. Da Vinci lived in a golden age of creativity, and among such contemporaries like Raphael and Michelangelo, and contributed his unique genius to virtually everything that he touched. So one of which is Athens in the Age of Pericles. You can find it on the internet. Renaissance Italy is a summit in human history. And so today no name better seems to symbolize Renaissance age than Leonardo da Vinci. So he not only developed his skill in drawing, in painting and sculpting during his apprenticeship, but through others working in and around the studio, he picked up knowledge in diverse fields which include chemistry, architectural, drafting as well. And in 1473, he was more than halfway through his studies with Verrocchio. He completed landscape drawing of Santa Maria del Neve, a pen and ink depiction of the Arno River Valley. And this actually is the earliest work that is clearly attributable to Leonardo da Vinci.
बिल्कुल, और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध पत्रकार और शहीदों की स्मृति में साहित्य प्रकाशन के प्रेरणा स्रोत रहे बनारसीदास चतुर्वेदी को। उनकी गणना अगर बात की जाए तो अग्रण्य पत्रकारों और साहित्यकारों में की जाती है। हिंदी साहित्य के प्रति अनुराग और लेखक की अभिरुचि के लक्षण में पत्रकार बनने से पहले दिखाई दे चुके थे। सन 1914 से वे प्रवासी भारतीयों की समस्याओं पर लिखने लगे। बनारसीदास 12 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। विशाल भारत छोड़ने के बाद बनारसीदास ने टीकमगढ़ से मधुकर का संपादन शुरू किया। ओरछा नरेश इनका विशेष आदर करते थे और हिंदी प्रेमी भी थे। बनारसीदास के बारे में कहा जाता है कि वे वास्तव में जीवन भर पढ़ने और लिखने के अतिरिक्त वो कुछ नहीं उन्होंने किया, और उनका अध्ययन जो था वो हिंदी, संस्कृत, भारतीय साहित्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अंग्रेजी के माध्यम से उन्होंने पाश्चात्य साहित्य का भी गहरा अध्ययन किया था। उनकी अपनी शैली थी जो बातचीत की भाषा के निकट होते हुए भी ओजपूर्ण और प्रांजल है और आकर्षक भी रही। निबंध की बात की जाए या फिर रेखा चित्र की, वर्णन उनके लिए एक लेख शैली विशेष रूप से उपयुक्त है, और उनकी रचनाओं में रेखा चित्र, साहित्य और जीवन, सत्यनारायण कवि रत्न, भारत भक्त, एंड्रयूज और संस्मरण आदि काफी प्रसिद्ध भी हुए।
सो फरहद, टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग के पुष्पनाथ, द ऑथर वी नो हिम फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू डिटेक्टिव फिक्शन राइटिंग इन मलयालम। So he has been rightly called the father of Malayalam fiction. He incorporated ideologies and supernatural elements creatively in horror story writing. And he primarily focused on plausible crime stories that motivated readers to become detectives themselves and then solve the mysteries. In 1968, he released his first novel, which was Chuvanna Manushyan. This is a scientific thriller, and then went on to write over 350 works, and this includes mainstream novels, also includes science fiction and horror fiction during the 1970s and 1980s.
और अब हम याद कर रहे हैं भारत के पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी विल्सन जोन्स को। उनका पूरा नाम था विल्सन लायनल गार्टन जोन्स और वो स्वतंत्र भारत के प्रथम खिलाड़ी रहे जिन्होंने बिलियर्ड्स में विश्व चैंपियनशिप मुकाबला जीता। उन्होंने 1958 और 1962 में दो बार विश्व चैंपियनशिप जीती। इन्हें 1962 में अर्जुन पुरस्कार, 1965 में पद्मश्री, 1990 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार और 1996 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। दो बार विश्व चैंपियन रहे विल्सन जोन्स 12 बार बिलियर्ड्स के राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे और 5 बार स्नूकर के राष्ट्रीय चैंपियन रहे।
सो टुडे लिसनर्स, वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग पंडित वसंत राव देशपांडे, द रिनाउंड इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वोकलिस्ट, अ ग्रेट परफॉर्मर ऑफ मराठी नाट्य संगीत। ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी टुडे ही लर्न फ्रॉम सेवरल गुरुज and he thereby refused to tie himself down to a single school of schooling. He started his musical training in his hometown Nagpur, and then he also followed Suresh Babu Mane of Kirana Gharana. The most important influence on him was Dinanath Mangeshkar. So Vasant Rao was the sole true inheritor of Dinanath's mercurial style of singing. And well, it is important to mention here that his renditions of rags such as Marwa and Nat Bhairav, Kaus, Shri Kalavati, and they had a quality to them that kept people interested. So without further ado, let's listen to his voice.
तुम्हारे कारण युग शीर बीतत मोरी रतिया, मैं पतिया लिखो वे मैं पतिया। मैं पतिया लिखो वे जी, 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 मैं पतिया लिख वेद, मैं पतिया लिख वेद। तुम्हारे कारण युग सी बीतत मोरी रतिया, मैं पतिया लिख वेद मैं।
He had received the training under different gharanas, Patiala, Bhindi Bazaar, Kirana, and yet he did not receive the stamp of any particular gharana. He performed classical and semi-classical music as well.
और श्रोताओं, आज ही के दिन हमें अलविदा कहा। आधुनिक असमिया साहित्य के शुरुआती दौर के भारतीय लेखक, कवि, इतिहासकार, शिक्षक और असम के भाषाविद हेमचंद्र गोस्वामी ने, इन्होंने 1920 में तेजपुर में आयोजित असम साहित्य सभा के चौथे अध्यक्ष के रूप में वो रहे और उन्होंने ब्रिटिश असम में अतिरिक्त सहायक आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दी। भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत साल 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया।
Well, today it's also David Beckham's birthday, the footballer. Well, primarily a right midfielder, and we know him for his range of passing, crossing ability, set piece taking. Well, footballers and football lovers will be getting this easily. Beckham is considered one of the best players of his generation and one of the greatest set-piece specialists of all time. He made 115 career appearances in total, appearing at 3 FIFA World Cups in 1998, 2002, 2006 as well, and UEFA European Championships in 2000 and 2004 as well. Well, Beckham was the runner-up in the Ballon d'Or in 1999, and he has been a UNICEF ambassador since 2005. Along with being inducted into the English Football Hall of Fame in 2008 and the Premier League Hall of Fame in 2021.
और आज ही के दिन जन्म हुआ था अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी होने के साथ साथ हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक, नाटककार, नाट्यकर्मी, निर्देशक और चर्चित इतिहासकार दया प्रकाश सिन्हा का।
Well, we save the best for the last. We are remembering Lawrence Hart, the influential lyricist who, alongside composer Richard Rogers, he formed one of the most successful songwriting partnerships in the history of musical theatre. Their collaboration began in early 1920s, leading to notable productions such as the Garrick Gaieties, Dearest Enemy as well, and the song that you're listening to in the background, this is by Ella Fitzgerald, this is You Took Advantage of Me.
But horses are frequently silly. Mine ran from the beach of Kala and left me alone for...
Well, Royal Heart was celebrated for his witty and his innovative lyrics, which often featured unconventional rhymes and also a playful sense of humor, contributing to the evolution of musical storytelling. So throughout his career, his work reflected a diverse range of themes and a diverse range of styles, from opera as well and other styles as well. So he passed away in 1943, but his legacy endures, with many of his songs continuing to be performed worldwide. And you're gonna shake me down
somehow. So what's the... तो इसके साथ ही अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये अंक जरूर पसंद आया होगा। तो शगुन और फरहत को दीजिए यहीं कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार।